ओम शांति। आज बाबा ने प्रश्न पूछा है, किसने किसको अपना बनाया? भगवान ने बच्चों को अपना बनाया या बच्चों ने बाबा को अपना बनाया? किसने किसको बनाया? बच्चों ने बाबा को अपना बनाया। दूसरी मुरली पड़ी ना, किसने किसको बनाया? पहले किसने बनाया? पहले बाबा ने बनाया। कहां थे हम? कहां पड़े थे? दुबन में थे। और कहां पड़े थे? दलदल में थे, दुबन में थे। और कहां पड़े थे? कचरे के डिब्बे में, रिफ्यूज बिन में। और कहां पड़े थे? भूल भुलैया में। पता नहीं था कहां जाना है, घर कौन सा है। और कहां पड़े थे? नरक में, माया की गोद में। और कहां पड़े थे? रावण की जंजीर में, बेड़ियों में। और कहां पड़े थे? किसकी प्रीति में? दुर्गति की प्रीति में। शोक वाटिका में। और कहां पड़े थे? काम चिता। तो बाप आए हैं तुम्हें नैनों पर बिठा कर ले जाने, एकदम नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। काम चिता से उठाकर ज्ञान चिता पर बिठा कर ले जाते हैं। गले का हार बना कर ले जाते हैं। सारे हिसाब किताब चुक तुक करा कर ले जाते हैं। इतने फंसे थे, एक मुरली में बाबा ने कहा है, तुम इतने डूबे हुए थे, इतने फंसे हुए थे, तुम्हारा केवल एक बाल ही दिख रहा था। उस एक बाल को पकड़कर मैंने तुम्हें बाहर निकाला है। तो किसने किसको अपना बनाया? बाबा बाप दादा समझते हैं कि बच्चों ने बाबा को अपना बनाया। इसके लिए क्या करते हैं? पहले सामने किसको रखते हैं, आगे किसको रखते हैं? बाबा बच्चों को रखते हैं। उधर कहते हैं वलेकम वालेकम सलाम, इधर बाबा क्या कहते हैं? मालेकम सलाम। भक्त किसकी परिक्रमा करते हैं? परिक्रमा किसकी करते हैं? भगवान की परिक्रमा करते हैं। और भगवान किसकी परिक्रमा करते हैं? बच्चों की परिक्रमा करते हैं। मास्टर ऑल संसार की सर्वशक्तिवान परमात्मा, ऑल माइटी ऑथोरिटी, तुमने क्या कर दिया है? उसको अपने स्नेह से बांधा है। तो बताओ कौन बड़ा है, बांधने वाले या जो बंधन में आ गया है? वो बांधने वाले बड़े। परिक्रमा किसकी परिक्रमा की जाती है भक्ति मार्ग में? परिक्रमा किसकी करते हैं? तीर्थ स्थानों की, देवता की, मंदिर की। और किसकी परिक्रमा करते हैं? पीपल, तुलसी, अग्नि, मंदिर, देवता, इन सब की परिक्रमा करते हैं। कुटिया की परिक्रमा कौन कौन करता है? किसकी भक्ति अभी चालू है? माताओं में से कुटिया की परिक्रमा कौन कौन करता है रोज? परिक्रमा भक्ति का शब्द है, प्रदक्षिणा। क्या कहते हैं उसे? परिक्रमा प्रदक्षिणा करते हैं। शिव की कितनी परिक्रमा की जाती है भक्ति मार्ग में? तीन। विष्णु की? चार। गणेश की? एक। सूर्य की और गणेश की एक। तो परिक्रमा का बहुत महत्व है। तो आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? चमकती हुई मणियों को देख रहे हैं, अमूल्य मणियों को देख रहे हैं, अमूलक मणियों को देख रहे हैं। और देख देख कर क्या हो रहे हैं? हर्षित हो रहे हैं। कब से देख रहे हैं? अमृत वेले से देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं नीचे, क्या देखा उसने? अमृत वेले से देखा, क्या क्या देखा? स्थूल सृष्टि में जैसे, साकारी सृष्टि में जैसे कि सजाते हो तुम लोग, कैसे सजाते हो? भिन्न भिन्न पुष्पों से सजाते हो, वो पुष्पों की जो सजावट है वो बाप दादा देख रहे हैं। दिन कौन सा है? अव्यक्त मास, अव्यक्ति दिवस, समर्थि दिवस, बच्चों के प्रत्यक्ष होने का दिवस, यज्ञ की स्थापना में महान परिवर्तन का दिवस। इस दिवस का शक्तियों को विल पावर देने का दिवस। तो इस दिवस पर बाबा क्या देख रहे हैं? चमकती हुई मणियों को देख रहे। सभी कहां बैठे हुए हैं? स्थिति के स्थान पर, चमकती हुई मणियों के स्वरूप में बाप दादा देखते हैं और बहुत खुशी होती है उसको। तुमने जो सजावट की है, अभी भी मधुबन में सजावट की है ना, कैसी सजावट की है तारा माता, कैसी सजावट की है? बहुत अच्छी सजावट की है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, चारों ओर जगमग रोशनी, और साथ साथ क्या है, केवल पुतले नहीं है पूर्वजों के, पर चैतन्य में विद्यमान है। चैतन्य में पूर्वजों के वाइब्रेशंस, प्रकंपन स्थान को पवित्रतम बना रहे हैं। तो ऐसी जगमग, ऐसी चमक दमक, ऐसी रंगोली बच्चों ने जो मेहनत की है, बाप दादा उस मेहनत को भी देख रहे हैं। कितनी अच्छी बात कही। यज्ञ में जो मेहनत करता है, जो सेवा में मेहनत करते हैं, बाप दादा उस मेहनत को भी देखते हैं। जो सेवाएं कर रहे हैं, जो गुप्त है, वो तो उसे बहुत प्रिय है। यहां पर किसकी यात्रा करते हो तुम? चार धाम की यात्रा करते हो। तो भक्ति में भी चार धाम है, कौन से? उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथपुरी, और पश्चिम में द्वारका। ये चार धाम है। उत्तराखंड के चार धाम अलग है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो चार धाम का उधर महत्व है। तो जैसे वहां चार धाम है, वैसे यहां पर भी चार धाम है। क्या महत्व है इन चार धामों का यहां के? इन चार धामों का क्या महत्व है कुमुद बहन? चार धामों का क्या महत्व है? अगर अगर शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है तो शांति स्तंभ पर पहुंच जाना। अगर बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाबा के कमरे में आ जाना। अगर व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। अगर उदास हो जाओ तो बाबा से रूरियान करने कुटिया में, झोपड़ी में आ जाना। पहुंच जाना, आ जाना, पहुंच जाना, आ जाना। कितनी अच्छी कविता है, सुनी है ना कविता? लिखी है कहां? लिखी है माताओं, हिस्ट्री हॉल के सामने। तो जैसे भक्ति में चार धाम का महत्व है, वैसे यहां पर भी चार धाम का महत्व है। वहां पर क्या करते हैं? चार धाम के दर्शन के लिए क्या करते हैं? लंबी क्यू लगाते हैं, कतार, भक्तों का तांता वहां रहता है। यहां पर भी तुम क्या करते हो? दर्शन के लिए, वो तो दर्शन के लिए, तुम भी यहां क्यू लगाते हो। वो कितना देर क्यू लगाते हैं? लंबी लंबी क्यू होती है वहां पे, लंबी लंबी कतार होती है। मुंबई में देखा है किसी ने लालबाग का राजा? देखा है कितनी लंबी क्यू होती है? नंबर कब लगता है? दो दिन के बाद, कभी तीन दिन के बाद। दो प्रकार की लाइन होती है, एक नवसाची, एक मन्नत वाली, और दूसरी एक होती है और एक मुख दर्शन वाली। मुख दर्शन की लाइन में जल्दी नंबर लग जाता है, 8 से 14 घंटा, पर जो बड़ी लाइन है उसमें 40 से 50 घंटा लगता है। हाँ, तो वहां पर लाइन लगती है किसके लिए? दर्शन के लिए। वो वहां लाइन लगाते और तुम, बाबा ने क्या कहा, यहां लाल बाग का राजा गणपति, वहां पर क्या कहते हैं? सत्य वचन महाराज। और यहां क्या कहते हैं? सत्कर्म, सत्कर्म है यहां पर। वहां पर सत्य केवल वचन है। तो बाबा ने आज मधुबन की महिमा गाई, स्थान की महिमा गाई। अव्यक्त दिवस है, सोचो उस अव्यक्त दिवस को कैसा होता है। अव्यक्त दिवस, ये मुरली कहां चली है? यहीं, कितने साल पहले? 35-34 साल पहले इसी हॉल में ये मुरली चली है। तो बाप दादा बच्चों को अपने से आगे करते हैं। किसने किसको अपना बनाया? बाप दादा समझते हैं कि बच्चों ने बाप को अपना बनाया। दिन कौन सा है? मिलन का दिन। वरदान कौन सा दे रहे हैं बाप दादा? सदा स्मृति भव। और इस स्मृति भव के वरदान के रिटर्न में क्या कर दिया उसने? मिलन मनाने आए ना, दिन भर बच्चे याद में हैं। इसके लिए बाबा शाम को मिलन मनाने आए। बच्चों को सलाम करते हैं भगवान, बच्चों को अपने से आगे रखते हैं भगवान। आगे की मुरली में क्या कहा? यहां तो कहा कि बच्चों ने बाप को अपना बनाया। आगे वाली मुरली में बिना सोचे समझे, भगवान भी कोई काम बिना सोचे समझे करता है? पर बोला है आज, क्या बोला? बिना सोचे समझे। कितने ही हिम्मतहीन थे, कितने ही कमजोर थे, परंतु बाप दादा ने क्या कह दिया, क्या वरदान दिया? वरदान कहो, भाग्य कहो या लॉटरी कहो, क्या कह दिया? जो है जैसे है मेरे हो, तुम मेरे हो। इसके आगे भी और एक चीज कही है किसी और मुरली में, सूरज भाई जी हमेशा सुनाते हैं, कौन सी? तुम मेरे हो। इसके आगे भी कुछ, मैं भी तुम्हारा हूं, केवल तुम मेरे नहीं हो, मैं भी तुम्हारा हूं। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है, इस संसार की सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी कह रही है कि मैं भी तुम्हारा हूं। तो बाबा ने वरदान दिया, सदा स्मृति भव। कौन सा बैलेंस चाहिए तो इस वरदान का स्वरूप बन जाएंगे? याद और सेवा का बैलेंस। संकल्प में क्या हो? याद। और कर्म में क्या हो? सेवा। ये क्या है? ब्राह्मण जीवन। अगर याद और सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। हर संकल्प में याद, हर कर्म किस लिए? सेवार्थ। हमारा हर कर्म सेवार्थ। लास्ट संडे कहा था ना, स्वप कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति। अगर ये नहीं कर रहे, स्वार्थ के प्रति है या अकल्याण के प्रति लगा रहे हो शक्तियों को, तो ये क्या है? ख्यानत। अमानत में ख्यानत। इसके लिए छोटी सी मुरली है। इस मुरली के बाद पार्टियों से मुलाकात है, जो कि पिछले संडे हो गई। दो पार्टियां जो थी ना, वो यहां से थी। तो आज बाबा ने दो मुरलियां चलाई। दूसरी मुरली कितने दिन के बाद है? दो दिन के बाद। पहली मुरली का सार, पहली मुरली का सार, स्मृति स्वरूप रहना, याद और सेवा का बैलेंस रखना और सदा इसी नशे में रहना, इसी खुमारी में रहना कि हमने उसको अपना बनाया है, हमने भगवान को अपना बनाया है और सदा मधुबन के महत्व को अपने हृदय से कभी कम नहीं होने देना। यहां जिस स्थान पर रहा जाता है उस स्थान का महत्व थोड़ा सा कम हो जाता है, लंबा समय अगर कोई रहे तो इस महत्व को कभी कम नहीं होने देना है। कौन सी भूमि है ये? इस संसार की सर्व महान भूमि है, सर्वश्रेष्ठ भूमि है। ऐसी भूमि इस संसार में और कहीं नहीं है। यहां के श्रेष्ठ वाइब्रेशन है। इसका महत्व पूछना है तो उनसे पूछो जो यहां पहुंच नहीं सकते, उन माताओं से पूछो, उन भाइयों से पूछो, उन कुमारों से पूछो जो यहां तक आ नहीं सकते, जो दूर कहीं सुदूर सात समुंदर पार ने मदची परत मात्र भूमिला सागरा प्राण तड़मड़ला। सावरकर ने कहा है अपनी मातृभूमि के लिए कि हे सागर से बात कर रहा है कि हे सागर मुझे अपनी मातृभूमि की तरफ ले चल। फिर से प्राण जैसे व्यथित है, कुंठित है, पीड़ित है, वो मातृभूमि कौन सी है? ब्राह्मणों की यह भूमि। तो इसका महत्व कभी भी कम नहीं होने देना। चार धाम यहां पर है, इन चार धाम का भी महत्व कम नहीं देना। इसको भक्ति नहीं बना देना फटाफट पांच मिनट में, एक मिनट इधर, एक मिनट इधर, एक मिनट उधर और चलो। करते हैं ना ऐसे कोई कोई, प्रदक्षिणा भी जो करते हैं संसार में, परिक्रमा जिसको कहते हैं, वो धीरे धीरे करते हैं। मेडिटेटिव स्टेट याद में, जैसे परमात्मा की याद में, कहां से कहां करते? क्लॉकवाइज करते हैं। क्यों करते हैं भक्ति मार्ग में परिक्रमा? उसका कोई कारण? जन्म मरण के चक्र से छोड़ने के लिए। चलो एक और, वहां तो मान्यता है कि परमात्मा कैसा है? सर्वव्यापी है। इसके लिए मंदिर को जैसे वो केंद्र समझते हैं और वो जो परिक्रमा है वो किसके इर्द गिर्द है? स्वयं भगवान के। राइट लेफ्ट से चालू करते हैं ताकि हमेशा राइट, हमारे राइट तरफ वो रहे, मंदिर की मूर्ति कहो या फिर जहां से भी, जहां भी परिक्रमा कर रहे हैं, तो वो परिक्रमा का वहां महत्व है। तो हमें भी केवल भक्ति जैसा यहां परिक्रमा नहीं करनी है, उसके महत्व को जानकर, कौन सा स्थान है, किसकी भूमि है, कर्म भूमि है, तपस्या भूमि है, महातीर्थ है, संसार की सर्वश्रेष्ठ भूमि है, इसके महत्व को निरंतर स्मृति में रखकर ही यहां रहना है। नहीं तो ये भूल जाता है बार बार। इसको बार बार स्वयं स्वयं को ही याद दिलाना है कि मैं इस समय कहां हूं, ये स्थान कौन सा है, ये समय कौन सा है और मेरी स्थिति कैसी रहनी चाहिए। जैसा स्थान वैसी ही स्थिति भी महान होनी चाहिए। लोग तीर्थ यात्राओं की मिट्टी लेकर आते हैं। मुरली थी ना, छह बातें बाप दादा देख रहे हैं, बच्चों के नाम रूप कर्तव्य, उसमें एक था स्थान। तो तीर्थ यात्रा की मिट्टी को भी कहां रखते हैं? माथे पर लगाते हैं। ये वह भूमि है, इसको कभी भूलना नहीं है। तो याद प्यार में क्या कहा बाबा ने? ऐसे अमूल्य मणियों को ऐसे सदा वरदानी श्रुति स्वरूप वरदानी आत्माओं को ऐसे स्नेही और बाप के स्नेही और सहयोग में रहने वाली आत्माओं को, विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बाबा को याद प्यार बाद में देंगे, नेक्स्ट मुरली के बाद, ठीक है? तो नेक्स्ट मुरली वो कब की है? अरे हाँ, वो पॉइंट तो रह गया, बाप भी चतुर तो बच्चे भी चतुर। ऑर्डर कौन करता है और हाजिर कौन हो जाता है? बाबा कहते हैं तुम ऑर्डर करते हो और मैं हाजिर हो जाता हूँ, तो हम भी हाजिर है। तो ये फर्स्ट मुरली, सेकेंड मुरली मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी। लास्ट संडे की राज दरबार याद है ना, विचित्र राज दरबार, उसमें कौन थे महामंत्री? मन बुद्धि और संस्कार, क्या थे वो? महामंत्री थे। दल बदलू तो नहीं है, मुरीद तो नहीं बन जाते हो, मंत्रिमंडल में हलचल तो नहीं है। चेक करो, मन को चेक करो, बुद्धि को चेक करो और संस्कार को, संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति, इन तीनों को बाबा ने कहा था चेक करो। तो कौन किसको देख रहा है यहां पर? वरदाता और विधाता, वरदाता और विधाता बाप। वरदाता अर्थात वर देने वाला, विधाता अर्थात बिस्टोअर ऑफ फॉर्च्यून, मतलब विधाता अर्थात वो तो भाग्य विधाता है, भाग्य को देने वाला भाग्य विधाता। विधाता अर्थात लॉ मेकर जिसको कहते हैं, ऑर्डेनर जिसको कहते हैं, विधि विधान की रचना करने वाला जो है उसे विधाता कहा जाता है। विधाता क्रिएटर को भी कहा जाता है, विधाता अर्थात क्रिएटर, रचता, सृष्टा। तो भाग वरदाता और विधाता बाप किसको देख रहे हैं? महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। सारी मुरली महादान क्या है और वरदानी कौन है और महादानी कौन है इसके ऊपर है। कितनी सूक्ष्म परिभाषा बाबा ने दी है महादानी की और वरदानी की। महादानी अर्थात जिनकी सेवा किससे ज्यादा है? वाणी से ज्यादा है और मनसा से परसेंटेज कम है, परंतु वर्तमान समय अनुसार कौन सी सेवा ज्यादा चाहिए? वरदानी की। वरदानी अर्थात जिसमें मनसा की परसेंटेज ज्यादा है और वाणी की परसेंटेज कम है। बाबा ने एक नया यज्ञ रचने को कहा इस मुरली में। एक है सेवा का यज्ञ और दूसरा यज्ञ कौन सा है? ज्वाला रूप शांति कुंड का। कौन सा यज्ञ? ज्वाला रूप शांति कुंड का यज्ञ। जैसे उस यज्ञ की धूम मचा दी है वैसे शांति कुंड की वायुमंडल वाइब्रेशंस की धूम मचाओ। कहीं पर भी बाबा स्थूल कुछ नहीं, स्थूल की बाबा महिमा जरूर कर रहे पर उसको चाहिए क्या? सूक्ष्म। हर जगह स्थूल की महिमा कर रहे परंतु चाहिए सूक्ष्म। उसे वो चित्र में इतना आकर्षण नहीं है, उसे उस झांकियों में उतना आकर्षण नहीं है, उसे उस भाषण में उतना आकर्षण नहीं है, उसे उस स्टेज में इतना आकर्षण नहीं है। उसे आकर्षण किस में है? कौन से भाषण में आकर्षण है? संकल्प की शक्ति और साइलेंस का व्याख्यान, इसमें आकर्षण है उसका, ये उसे अति पसंद है। स्टेज कौन सी चाहिए उसे? कर्मातीत की स्टेज पर कौन सा पार्ट बजाने वाले? वरदानी पार्ट बजाने वाले। झांकियां कौन सी चाहिए उसे? कौन सी झांकी चाहिए? लाइट हाउस माइट हाउस की झांकी चाहिए। और चित्र कौन सा चाहिए उसे? मुरली पढ़ी है ना सबने, किस किस ने मुरली सुनी है सबसे पहले वो बताओ। सबने सुनी है और पढ़ी किस किस ने? कम में। जब तक स्वयं नहीं पढ़ोगे वो अंदर धारणा नहीं होगी। केवल सुनना सब कुछ नहीं है, सुनना फिर पढ़ना फिर चिंतन करना उसके ऊपर और फिर बुद्धि में रखना, फिर उसकी चर्चा करना, उसको स्वरूप में लाना, बहुत सारी स्टेजेस है। एक ही स्टेज में रुक नहीं जाओ, आगे भी बढ़ना है, आगे भी बढ़ना है, कल दूसरी आ जाएगी। इसके पहले समय बहुत कम है, 24 घंटे का ही समय है बस। बाबा ने कहा मेरा एक एक वाक्य का कीमत कितनी है, तो वैसे समझ रहे हो एक एक वाक्य की कीमत कितनी है, एक एक वर्षन की कीमत कितनी है? करोड़ों लाखों क्या कहे, इतने अमूल्य है। क्या हम उसे वैसा ही अमूल्य समझते हैं? वो दिखाया ना, एक व्यक्ति होता है हीरो का विशेषज्ञ या हीरो का व्यापारी, उसकी मृत्यु हो जाती है, एक ही जैसे पत्थर छोड़कर जाता है बस, पत्नी और बच्चा। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी उसकी माँ उसको कहती है कि ये जो पत्थर है इसकी जरा कीमत देख कर आओ कितनी है, बेचना नहीं, ध्यान रखना, केवल कीमत देख के आओ इस पत्थर की कितनी है। वो बच्चा सबसे पहले जाता है सब्जी वाली के पास, वो कहता है अम्मा जरा देखना इस पत्थर की कीमत कितनी है। वो देखती है इसके बदले कितने दोगी, वो कहती है ये पत्थर इसके बदले दो गाजर देख सकती हूं मैं, बस मेरे तौलने के काम आ जाएगा ये। आगे जाता है दुकानदार के पास, दुकानदार पत्थर को देखता है, कहता है 500 रुपए तो मैं दे सकता हूं इसके। तो कहता है ठीक है। फिर जाता है एक सोनार के पास, सोनार बहुत अच्छे से देखता है, कहता है ये तो थोड़ा हीरे टाइप लग रहा है, पूर्ण विश्वास नहीं है, विश्वास ये नहीं है, पर ये हीरे जैसा लग रहा है। वो कहता है 10,000 मैं दे सकता हूं। फिर जाता है हीरे के व्यापारी के पास, हीरा का व्यापारी कहता है ये तो हीरा है, मैं इसका 1,00,000 दे सकता हूं। उसके बाद में शहर में जाता है, शहर में जाता है तो जो हीरे का सबसे प्रसिद्ध विशेषज्ञ होता है वहां पे, स्पेशलिस्ट, वो उस पत्थर को देखता है और आश्चर्य से उस बेटे उस लड़के की तरफ देखता है और कहता है कि बच्चे ये जो हीरा है इसको लाखों करोड़ों भी लगा दिए जाए तो भी कम है, ये ऐसा अमूल्य हीरा है। तो बाबा ने हमारे सामने क्या रख दिया है, इतने सारे हीरे रख दिए है, और हम कौन से भाव लगा रहे हैं? क्या इतना महत्व है कि उसके एक एक वाक्य को मुरली से निकालकर इधर फिट कर दिया है कि बस सुना और गए? भक्ति मार्ग में प्रवचन सुनने जाते हैं ना, वैसा ही करते हैं, वहां पर कहानी सुनी, कथा सुना कि बस चले, कपड़े झाड़ते हैं उसके साथ में, वो ज्ञान भी झाड़ के चले जाते हैं। भक्ति मार्ग तो नहीं चल रहा है, केवल कनरस तो नहीं है मुरली। बाबा ने कहा है मुरली है बाप की पालना, ये पढ़ाई है बाप की पालना, ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है। सारे विश्व में मंडे की मुरली एकमात्र ऐसी ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, ऐसी और कहीं नहीं है। और हम सब कौन है? स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को इतना ध्यान देना चाहिए, पढ़ना। वो जो हमारी दिनचर्या है उसमें 2 से 4 बजे का टाइम किसके लिए लिखा है? पढ़ा है ना वहां पर हिस्ट्री हॉल के, वहां स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बहुत ही छोटा शब्द है, स्वाध्याय बड़ा ऊंचा शब्द है। स्व अध्ययन करना, पठन पाठन करना, तो ये हमारी स्टडी है। हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स कहां जाकर पढ़ते हैं? बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था, बगीचे में एकांत में जाकर अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो उतना ही हमको हर मुरली की स्टडी करनी है। तो हम थे कहा, फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हुआ, आगे क्या कहा बाबा ने? वरदानी स्वरूप बनने के लिए क्या मनसा के लिए कहा ना, मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना शुभ कामना, इसकी जो सेवा इससे रिजल्ट कम समय और रिजल्ट ज्यादा निकलता है। आगे क्या कहा, इसके लिए क्या करो, वरदानी स्वरूप बनने के लिए क्या करो? शुद्ध संकल्प का, अपने अंदर शुद्ध संकल्प जमा करो। सारे दिन भर क्या करते रहो, किस सागर में लहराते रहो? शुद्ध संकल्प के सागर में लहराते रहो। और फिर समय मिले तो क्या करो, फिर तले में चले जाओ। वो कहाँ है? तला में क्या है, तले में क्या है? साइलेंस, ब्रेक, पावरफुल हो। चार प्रकार के जो संकल्प, एक है साधारण संकल्प, एक है व्यर्थ संकल्प, तीसरा है निगेटिव संकल्प, और चौथा है विकारों के भी संकल्प है, और तो वो दूसरे हैं ये जो जिनसे मुक्त होना है। साधारण संकल्प जो दिनचर्या के हैं, उसके बाद है उसकी गति थोड़ी सी फिर भी तेज ही होती है, उससे ज्यादा तेज होती है व्यर्थ की गति, उससे ज्यादा तेज होती है निगेटिव की गति, और सबसे ज्यादा तेज होती है विकार की गति। विकारों में भी सबसे ज्यादा तेज होती है काम विकार की स्पीड, सबसे ज्यादा होती है। बाबा कह रहे हैं शुद्ध संकल्प, पॉजिटिव थिंकिंग भी नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत छोटी बात है। संसार में लोग पॉजिटिव थिंकिंग की चर्चा करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के कोर्स है। हमारी केवल पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, हमारा स्वमान है। स्वमान अर्थात हायर कॉन्शियसनेस। जाओ संसार में किसी के पास है शुद्ध संकल्प? सुबह उठते ही दिनचर्या कैसी चालू होती है? न्यूज़पेपर, टीवी, इससे दिनचर्या चालू होती है। शुद्ध संकल्प उनके पास है नहीं। और हमारे पास तो खजाना है शुद्ध संकल्पों का, पर वो खजाना मुरली में ना रह जाए बस। खजाने को यूज करने को कहा है लास्ट संडे, याद है ना? नहीं तो खुशी नहीं होगी। लॉकर में अगर रखा है तो यूज करना है, कार्य में लगाना है हर खजाने को, ज्ञान, गुण, शक्तियां, सब कुछ। तो शुद्ध संकल्प के सागर में लहराते रहो, और समय मिले तो कहां चले जाओ? तले में चले जाओ, साइलेंस। साइलेंस में वही जा सकते हैं जो पहले से ही जिनके मन में संकल्प शुद्ध है, स्थिर है, शक्तिशाली है, पावरफुल है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है। उसमें अगर चिंता के संकल्प है, ईर्ष्या, द्वेष और विकारों और व्यर्थ और निगेटिव संकल्प है, वो तुरंत साइलेंस में नहीं जा सकते। साइलेंस का अनुभव करना है। ये मार्ग अनुभव का मार्ग है। जब तक अनुभव नहीं होता है, ये केवल फीका ज्ञान है बस। ये हमारे अंदर चला जाए, अंगीकार कर ले हम इसको। आगे बाबा ने क्या कहा, वो तो आगे है, उसके पहले बाकी संकल्पों को, अन्य संकल्प जो भी है उसको कंट्रोल करना है। इसके लिए बाबा ने कहा केवल ये संकल्प शक्ति की बात नहीं है, तीनों ही जो शक्तियां हैं उन पर संपूर्ण अधिकार हो। एक भी शक्ति पर अगर अधिकार कम होगा तो वरदानी स्वरूप जितना बनना चाहते उतना नहीं बन सकेंगे। इसके लिए जो तीन शक्ति है, इसमें विस्तार बाबा ने संकल्प शक्ति का किया है कि हमारा हर संकल्प हमको श्रेष्ठ बनाना है। श्रेष्ठ बनेगा कैसा? मुरली के स्टडी से, अध्ययन से, योग से, तपस्या से। संकल्प शुद्ध और उसमें फिर शक्ति भरती जाएगी योग से। एक एक संकल्प जैसे पावरफुल होते जाएगा, और जिसकी जिसके संकल्प पावरफुल है वो स्थिति स्वतः ही पावरफुल हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा जैसे वो सेवा के साधन है, तो यहां पर भी सिद्धि स्वरूप आत्मा है, तुम्हारे पास साइलेंस की पावर है, वैसी होनी चाहिए। इस वर्ष में क्या करना है? महायज्ञ तो रचा, इसमें क्या करना है, किसको स्वाहा करना है? ये जो तीन शक्तियां हैं इनमें जो अधिकार की कमी है इसको क्या करना है? स्वाहा करना है। फिर यहां पर बाबा ने बहुत सारा विस्तार किया, जैसा वो विशाल कार्य है। यहां पे स्वचिंतक, शुभ चिंतक, तीसरा सर्वशक्तियों से मास्टर विधाता, श्रेष्ठ संकल्पों से मास्टर वरदाता, लाइट हाउस, माइट हाउस, शक्ति के तले में जाओ और मीठा अति शांत स्वरूप का अनुभव। ये सब प्रकार की सेवा का अनुभव करना है। आगे आगे क्या कहा? महायज्ञ तो रचा, परंतु अभी कौन सा यज्ञ रचना है? शांति कुंड, ज्वाला रूप शांति कुंड। कितना अच्छा शब्द है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में देख रहा था, उसमें है वेसल ऑफ साइलेंस। वेसल मतलब कंटेनर होता है ना, वेसल, वो साइलेंस। शांति कुंड कहा और वेसल ऑफ साइलेंस कहा। तो बाबा कहते हैं शांति कुंड रचना है। वाणी की सेवा, और वाणी की सेवा की बाबा ने विस्तार किया यहाँ पे। वाणी की सेवा से क्या करते हैं? हल चलाते हैं। पहले स्टेप हल चलाते हैं, फिर क्या करते हैं? उससे हलचल होती है, फिर बीज डालते हैं, फिर पानी डालते हैं। कौन सा पानी? शीतलता के स्वरूप का और साइलेंस की पावर का पानी डालते हैं, और उसके बाद में फिर फल निकलता है। फल निकलने की जो स्टेप है उसमें मेहनत है। यहां हल चलाना अर्थात क्या हो सकता है? वाणी से सेवा करना, कोर्स कराना, या उसी के साथ साथ बीज डाल देना ज्ञान का, और फिर स्नेह देना, शीतलता का जल डालना, और फिर बीज निकलेगा। तो केवल कोर्स कर देना पर्याप्त नहीं है, उसके सामने हमारी स्थिति कैसी चाहिए? वरदानी स्थिति, महादानी केवल नहीं, वरदानी स्थिति। जब हम कोर्स करा रहे, जब हम ज्ञान सुना रहे, साथ साथ उस आत्मा में भी पावर भरनी है, साथ साथ। वहीं पर अनुभव कराना है। आगे कहा है ना दादियों से मुलाकात में, वो तो सब जानते हैं, कहते हैं हमको सब पता है, हमको ये भी पता है, हमको वो भी पता है, जो भूल की है उसकी शिक्षा क्या है वो भी हमको पता है। शांति स्वरूप का और शक्ति स्वरूप का थोड़ा सा भी अनुभव करा दो, सेकंड का भी अनुभव करा दो, दो सेकंड का भी अनुभव कराओगे तो चुप हो जाएंगे। तो आत्माओं में बल नहीं है, ज्ञान तो सबको पता है, परंतु यहां क्या चाहिए, पावर भरनी है उनमें। और पावर हम तभी भर सकते हैं जब हम स्वयं शक्तिशाली है। तो मधुबन भूमि में जब हम आए हैं तो स्वयं को सशक्त बनाना है, पावरफुल बनाना है। यह तपस्या भूमि है, सेवा के जंगल में कहीं खो नहीं जाना। सेवा तो है ही, परंतु श्रेष्ठ सेवा हम तभी कर सकते हैं जब हमारी मन की स्थिति बहुत ऊंची है। उस ऊंची स्थिति से हम साधारण कर्म भी करें तो भी वो श्रेष्ठ हो जाएगा। फिर यहां से टॉपिक थोड़ा सा बाबा ने चेंज किया है, वरदान में आ गए बाबा। वरदान में मेहनत नहीं है, वरदान सहज मिला है। सबसे पहला पहला वरदान कौन सा मिला वीरबाला माता? सबसे पहला पहला वरदान कौन सा मिला आज की मुरली को छोड़कर? पवित्र बनो, योगी बनो, और कौन सा वरदान मिला? वरदान वरदान श्रीमत नहीं, बस। और भी और कोई वरदान नहीं मिला? दिव्य बुद्धि का जन्मते ही बच्चों को बाबा ने कौन सा वरदान दे दिया? दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया, दिव्य नेत्र दे दिए, और अमर भाव का वरदान दिया, भाग्यशाली भाव का वरदान दिया, मास्टर सर्वशक्तिवान भाव का वरदान दिया, सारे शक्तियां वरदान में दे दी जन्मते ही। बस समझ में नहीं आता, एक कुछ दिन पहले मुरली में आया था ना, बच्चा बाबा बाबा कहता है समझ में नहीं आता, यहां पर भी तुम बच्चे मम्मा बाबा कहते हो पर तुमको समझ में कुछ नहीं आता है। कुछ दिन पहले था ना मुरली में, तो जन्मते ही मंजूबेन बाबा ने कौन कौन से वरदान दे दिए? अमर भाव, योगी भाव, पवित्र भाव, मास्टर सर्वशक्तिमान भाव, भाग्यशाली भाव, 21 जन्मों के वर्षे के अधिकारी भाव, त्रिकालदर्शी भाव, त्रिनेत्री भाव, सारे ही वरदान दे दिए, जन्मते ही दे दिए, इतने सारे वरदान दे दिए। वरदानों की बरसात हो गई जन्मते ही। तो यहां आज बाबा ने कहा वरदान में मेहनत नहीं है, वरदान सहज मिल गए जन्मते ही। दिव्य जन्म होते ही पहला वरदान कौन सा मिल गया? जो हो जैसे हो मेरे हो, बिना सोचे समझे। क्या कहा बाबा ने? बिना सोचे समझे। कैसे थे तुम? शक्तिहीन, हिम्मतहीन। कौन कह रहा है ये? त्रिकालज्ञ, त्रिकालदर्शी, सर्वशक्तिवान क्या कह रहा है? मैंने बिना सोचे समझे। कितनी अच्छी भाषा बोली बाबा ने। तो बच्चों को वरदान दे दिया, परंतु इसमें दो मालाएं बन गई। फिर भी कौन सी दो मालाएं हैं वो? जिन्होंने निरंतर इस वरदान की स्मृति स्वरूप रहे, वरदान को जीवन में लाया, एक तो वो, और दूसरे जिन्होंने कभी कभी लाया उनकी कभी कभी सिमरी जाएंगी माला, इनकी सदा। जो स्वयं सदा बाप का बना रहता है वही दूसरों को भी सदा बाप का बना सकता है। जिसका स्वयं ही बाप से कनेक्शन टूटता टूटता है, कभी टूटता है कभी जुटता है, कभी है कभी नहीं है, कभी याद है कभी संसार याद है। उस दिन कहा ना तुमको बस एक तरफ देखना है, इधर देखना ही नहीं है, मुरली में था ना, पीछे मुड़कर देखना नहीं है, तुम्हारा बुद्धियोग उधर जाना नहीं चाहिए, तुम्हारे कांध उधर लटकने नहीं चाहिए, तुमको इस दुनिया की कोई भी आस नहीं रखनी है, तुम्हें आस रखनी है बस एक, सुखधाम की, तंदूरी की नहीं, तुम्हें आस रखनी है बस एक, सुखधाम की। सुखधाम में पहुंचेंगे तो बाबा राम भाई तो बैठे हैं ना, स्वागत। तो बाबा ने कहा स्वयं की शक्तियों से, स्वयं के गुणों से जो ऐसी निर्बल आत्माएं हैं उनको क्या करना है, बाप के समीप लाना है। कितना बड़ा कार्य है। जिनमें परमात्मा प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है, परंतु केवल अभी भी मेजोरिटी में उनमें भी संकल्प आ रहा है, कौन सा, कि आध्यात्मिकता जो कर सकती है बाकी और कोई कर नहीं सकता। उनके पास एक टांग तो है, दूसरी टांग हमें देनी है। उनके पास ये एक टांग है, कौन सी टांग है उनकी, इच्छा की, शुभ इच्छा। हमको कौन सी टांग देनी है उनको, हिम्मत की टांग देनी है। उल्लास से क्या कहना है उनको, आप भी बन सकते हो, उल्लास से ये कहना है। और हिम्मत भी कैसे देना है, अपने वरदानों से उनको हिम्मत देनी है। भक्ति में गायन है, भगवान चलाता है किसको, नहीं भक्ति में क्या गायन है, मुकम करोति वाचालम पंगु लंगयते गिरिम तत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। यहां बाबा कह रहे हैं कि तुम चलाओ उनको, भक्ति में मैंने चलाया, अब तुम चलाओ। अगर तुम किसी को चला दो तो वो क्या कहेंगे, फिर शुक्रिया करेंगे बार बार। लंगड़े को दौड़ाओ, याद प्यार में कहा लंगड़ी आत्माओं को कहां दर दो, दौड़ की रेस में लगाओ। जो चल ही नहीं पाते थे उनको दौड़ की रेस में, मैराथन में सीधा खड़ा कर दिया हमने, ये बाबा चाहते हैं, तो वो बाप के समीप आ जाएंगे। हिम्मत, वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि आना तो चाहते हैं परंतु हिम्मतहीन समझते हैं अपने आप को। विश्व भर की आत्माओं को देखो, भिन्न भिन्न देशों में जाओ, मुस्लिम कंट्रीज में जाओ या और कहीं देशों में जाओ, पता तो चल गया है कि आध्यात्मिकता से जो हो सकता है वो और किसी से नहीं हो सकता है, परंतु शक्ति भी तो चाहिए ना। केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, केवल ज्ञान की पॉइंट्स नहीं, अनुभव भी तो चाहिए ना। विवेकानंद ने धर्म की कई और डेफिनेशन दी है, एक जगह शाश्वत आत्मा का शाश्वत परमात्मा से शाश्वत संबंध अर्थात धर्म। रिलीजन की ये डेफिनेशन है, शाश्वत आत्मा का शाश्वत परमात्मा से शाश्वत संबंध, इसको धर्म कहा है। तो हमें आत्माओं को धार्मिक बनाना है, मैराथन में खड़ा करना है उनको, शक्तियों से भरना है, उनको हिम्मत देना है, उनको सहयोग देना है। ये हमारा बहुत बड़ा कार्य है। बाबा ने कहा इस वर्ष ये कार्य करना है तुमको। फिर वापस शक्ति कुंड के बारे में बाबा ने कहा, उसका क्या करो, धूम मचाओ। और एक चीज हम भूल गए, बहुत अच्छा, वो कौन सी चीज भूल गई, बाबा ने वरदान देते समय क्या नहीं देखा, चाहे बच्चा है चाहे वृद्ध है, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, चाहे बीमार है चाहे तंदुरुस्त है, किसी भी देश का, किसी भी धर्म का कुछ नहीं देखा। सबको बड़ा पोजीशन वाला है या साधारण है, सबको बस दे दिया, लुटा दिया। आगे बाबा कह रहे हैं, वो झांकी वाली पॉइंट जो हमने बोल दी, बाबा को उन झांकियों में क्या चाहिए, चित्र भी कैसा चाहिए, बाप समान चैतन्य चरित्र, ये चित्र चाहिए, चैतन्य चरित्र या चित्र चाहिए, ऐसा चित्र चाहिए। और झांकी भी कौन सी, लाइट हाउस और माइट हाउस की, और स्टेज कर्मातीत की, और भाषण भी कौन सा, सबसे पावरफुल भाषण कौन सा है, साइलेंस का, मौन का, संकल्पों का। ये वरदानी स्वरूप बाबा देखना चाहते हैं। जितनी पावर साइलेंस में है इस संसार में, और उतनी पावर किसी में भी नहीं है। जितनी हम मनसा से अमृत वेला जो हमारी सेवा हो जाती है वो और कहीं, सारे दिन भर हम करते जरूर है परंतु जो अमृत वेला हमसे जो सेवा होती है या नुमा शाम, वो सबसे पावरफुल सेवा है। कर्म करते समय हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, या मुझे याद है एक अनुभव मेरे ही जीवन का, एक बार बहुत सीरियस पेशेंट आ गया था आईसीयू में, सुबह सुबह 3 बजे जब मैं इधर था अमृत वेला। तो अमृत वेला नेचुरली स्थिति हमारी बहुत ऊंची होती है, वो पेशेंट बहुत सीरियस था। मैं गया, पेशेंट को देखा, पेशेंट को इतना मतलब खराब था, कुछ बोला नहीं, नहीं तो सीरियस पेशेंट होता है तो बहुत हलचल होती है, ये करो वो करो, ये लाओ वो लाओ, इधर लाओ वो लाओ, ऐसे करो वैसे करो, वो पेशेंट को मैंने कुछ भी नहीं बोला, मतलब जो बहुत सारे हमारे स्टाफ वगैरह थे वहां पर, उस पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ा, उसको कुछ प्रोसीजर्स करनी पड़ी, सेंट्रल लाइन ये वो, आधा घंटा तक सब कुछ किया, नोट्स ये सब, इंजेक्शन सब देके मैं फिर से इधर आ गया और फिर भूल गया क्या किया, क्योंकि जैसे कि वो बहुत एक जिसको कहते हैं ना अव्यक्त स्थिति, जो अव्यक्त अमृत वेला सभी की रहती है, अव्यक्त स्थिति जिसमें हम मौन में रहते हैं, बोलते कम है, उसी अवस्था में जैसे वो सारे कर्म हुए आधा घंटा, फिर यहां आके बैठ गया और फिर मैं भूल गया, मुझे मतलब भूल गया इन द सेंस कि अपने फिर से योग जो चालू ही था मन में, वो भी चालू था और योग भी चालू था, वो भी चालू था और योग भी चालू। और फिर उसके बाद में जब हम लोग गए 9 बजे राउंड के लिए, तो उसके रिलेटिव बोले अरे वो तो एकदम ठीक हो गया, अभी होश में है। मुझे लगा किसकी बात कर रहे हैं, जब अंदर देखा तो वो पेशेंट दिखा रहे, ये इसको सुबह सुबह देखा था। तो ये जो हमेशा हम कहते हैं कि कर्म करते समय बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है, मतलब हाँ दिन में, परंतु वो देखा, मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा ही अमृत वेला सारा ही दिन भर रहे तो कितना अच्छा हो जाए, ऐसी ही अव्यक्त अवस्था सारे ही दिन भर रहे तो, वाणी से परे, आवाज से परे, फिर भी कार्य हो सकते हैं, जो हम हमेशा कहते हैं ना कि नहीं हो सकता है, बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लोगों को काम नहीं करते तो चिल्लाना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, वैसे करना पड़ता है, कर्म उस दिन भी किए थे, वो भी बहुत ही ज्यादा, उसको बहुत सारी प्रोसीजर्स थी, ये करो वो करो, वो सब कुछ किया पर सब कुछ मौन में, और वो ठीक भी हो गया, देखा अंदर जाके देखा तो हाँ सही में पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस था। फिर दूसरे दिन ट्यूब वगैरह निकाल के वेंटिलेटर से हटा के ठीक करके वो चला गया, कोई टूरिस्ट था कहां से आया हुआ। तो कहने का भाव है कि अव्यक्त स्थिति जो है वो हो सकती है, ये असंभव सी बात नहीं है। ब्रह्मा बाबा के बारे में आगे कहा ना, अभी अभी हैं और अभी अभी गायब, अभी अभी गुम, अभी अभी अंडरग्राउंड, अभी अभी एकांतवासी। ऐसी अवस्था अगर अभ्यास, अभ्यास की लहर बाबा ने कहा है, ये अभ्यास की लहर चाहिए, प्रैक्टिस करो तो सब कुछ हो सकता है। आगे बाबा ने यहां फिर वो सब ब्राह्मणों की उंगली चाहिए, कहा ना ये कार्य जो संपन्न होगा सबके एक संकल्प से ये कार्य संपन्न होगा। यहां पे और थोड़ी एक दो बातें कही और ये मुरली यहां पर पूरी की। दादियों से क्या कहा बाबा ने, धार धार प्रश्न पूछे, 5 प्रश्न है, कौन से प्रश्न, ड्रामा चला रहा है आपको या आप ड्रामा को चला रहे हो, रचता आप हो या ड्रामा रचता हो, मास्टर आप हो या ड्रामा मास्टर है, पहला प्रश्न। समय, आप समय को समीप ला रहे हो कि समय समीप आ रहा है, और खींचने की बात है ना, स्वयं समीप आ रहे हो या ड्रामा या समय स्वयं को खींच रहा है। अभी आप क्या कहते हो कि जो होगा वो ड्रामा अनुसार होगा, एक समय आएगा कैसे क्या होगा, तब इतनी स्पष्ट टचिंग होगी, कितनी स्पष्ट टचिंग कि जो होने वाला है आप क्या कहोगे, तब ऐसा नहीं कहोगे कि जो ड्रामा में है वो होगा, क्या कहोगे, जैसे ड्रामा और आपके संकल्प पैरेलल चलेंगे, यहां पर जो आप सोचोगे वो होगा। बाबा ने उदाहरण भी दिया यहां पे प्रारब्ध का, जैसे प्रारब्ध के लिए कहते हो ना, वैसे ही क्या होगा, जो होना है जो ड्रामा में होगा हो वही होगा, जो होना है वही होगा, मतलब जो हम सोचेंगे वही ड्रामा में होगा, जो होगा वो देखेंगे नहीं, देखा हुआ है और वही होगा। यहां प्रारब्ध का उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे भविष्य के लिए आप सोचते हो ना कि आपका प्रारब्ध, वैसे ये भी वैसे होगा, ऑथोरिटी से कहेंगे, स्पष्टता की ऑथोरिटी होगी, स्पष्टता की पावर होगी, कल क्या होने वाला है, एक सेकंड के बाद क्या होने वाला है, वो सब जैसे कि स्पष्ट होगा, इतना स्पष्ट होगा। पर इसके लिए आगे कंडीशन डाली है बाबा ने पहले तो बोल दिया हो जाएगा, फिर कहा परंतु इसके लिए ये चाहिए, एकांतवासी। तो जैसे उसके लिए आप मास्टर बन गए हो, अगर कोई कहे कि नींद है नहीं है पता नहीं होगा नहीं होगा, परंतु आपको विश्वास है होगा प्रारब्ध, वैसे ये भी होगा। आगे इसके लिए क्या चाहिए, एकांतवासी। तो जैसे इस मुरली में कहा है अभी अभी एकांतवासी हो जाओ, तो अभी अभी हम एकांतवासी होकर आवाज की दुनिया से परे निकल जाए, एकांतवासी, अंडरग्राउंड, गुम, गायब। एक शब्द है एकांत और दूसरा है अकेलापन, इनमें क्या अंतर है? अकेलापन और एकांत, इसमें क्या अंतर है? बाबा ने कहा एकांतवासी बन जाओ, एक के अंत में खो जाना। और अकेलापन मतलब, अकेलापन दुख सूचक है, अकेलापन अर्थात उदासी है, उसमें अवसाद है, भय है, डर है। और एकांत अमृत का, अमृत तुल्य शब्द है। एकांत अर्थात आनंद की अवस्था है। एक के अंत में शरीर का, एक की याद में शरीर का अंत हो जाना, इसको बाबा ने एकांत कहा है। यहां तो स्थूल एकांत की भी बात हम कर रहे हैं कि एकांतवासी हो जाओ, स्थूल भी और सूक्ष्म भी दोनों। तो एकांतवासी अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड अर्थात क्या कहते हैं, अंतर्भौम, भूमिगत। उदाहरण दिया जैसे वो वैज्ञानिक कोई भी खोज करते हैं तो, कोई बड़ी इन्वेंशन, शक्तिशाली इन्वेंशन होती है तो क्या होते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते। तो यहां पे तुमको भी अंडरग्राउंड हो जाना है। अंडरग्राउंड वो भी ऐसा नहीं कि तुमको टाइम नहीं मिलता है, पांच इकट्ठा मिला, आधा घंटा नहीं मिलेगा, एक घंटा नहीं मिलेगा, जो टाइम है उसी में संपूर्ण बनना है। कई ये सोचते हैं कि अभी सेवा बहुत ज्यादा है, बाद में देखेंगे पुरुषार्थ का। प्रतिकूल परिस्थितियों में ही संपूर्ण बनना है, प्रतिकूल परिस्थितियों में ही संपूर्ण बना जाता है। जब एकदम अच्छा हो जाएगा शायद तब पुरुषार्थ ही नहीं करोगे। अभी कह रहे हो कि टाइम नहीं मिलता है, अभी ये है वो है वो है। आपको अगर ऐसा टाइम दे दिया जाए कि बस पुरुषार्थ करो, छुट्टी देती 10 दिन, 10 दिन में केवल योग करो, फिर देखना क्या होता है। सोचेंगे सेवा की होती तो थोड़ा दुआएं तो मिल गई होती, यहां तो सेवा भी नहीं की और पुरुषार्थ जितना चाहिए था उतना भी नहीं हुआ, वो अवसाद, एक पश्चाताप रहेगा। इसके लिए जो सेवा है, जितना टाइम है, जिस जगह काम करते हो, जिस डिपार्टमेंट में हो, वही बेस्ट टाइम है, बेस्ट डिपार्टमेंट है, और आसपास के वो बेस्ट लोग हैं, उन्हीं के बीच में संपूर्ण बन के दिखाना है। जो आसपास है वही घर, वही सेंटर, सब कुछ उसको बेस्ट बना देना है अगर नहीं है तो। तो एकांतवासी अंडरग्राउंड उसके लिए। फिर दूसरों को क्या अनुभव होगा, बाबा ने और एक बहुत सुंदर महावाक्य यहां कहा है कि ड्रामा की जो सीन है, ड्रामा के पर्दे के पीछे जो सीन है वो उसकी अनुभूति होगी। पर्दे के पीछे जो ड्रामा की सीन है वो तुम्हें अनुभव होगी, मतलब आज क्या होने वाला है वो सीन जैसे कि स्पष्ट दिखाई देगी, इतनी स्पष्ट दिखाई देगी कि ये होने वाला है, पहले से ही टचिंग होगी। जितने ज्यादा अंडरग्राउंड उतनी ज्यादा अच्छी टचिंग, तो ये अनुभव होगा। और दूसरों को क्या अनुभव होगा, फिर दूसरों को क्या अनुभव होगा, जैसे ये इस स्थान के है ही नहीं, जैसे ये कहीं और के है, जैसे ये यहां गायब हो गए, जैसे कि ये फरिश्ते हैं। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया ना यहां पर, जैसे बाबा भी डायरेक्शन देते देते बोलते बोलते गायब अंडरग्राउंड। तो बाबा ने यहां पर एक अनुभव ही, ये जो है इसी को साक्षात्कार कहेंगे, अनुभव समान साक्षात्कार। ये वर्ड नोट किया आपने मुरली में, बहुत सुंदर वर्ड है, अनुभव समान साक्षात्कार। मुझे पहले लगा शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, परंतु प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, बराबर है। अनुभव समान साक्षात्कार, ये जो उनको जो अनुभव होगा ना कि जैसे ये अभी है कि नहीं है, अभी अभी है, जैसे वो गुम हो गए, ये गुम अवस्था में है, तो ये अनुभव ही बाबा ने कहा यही साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब कोई ऐसे चतुर्भुज और वो सब की बात नहीं है, यहां अनुभव ही साक्षात्कार है। रियलाइजेशन, विजन, और यही क्या कर देगा फिर, प्रत्यक्षता, रिविलेशन। रियलाइजेशन, विजन, रिविलेशन, अनुभव, साक्षात्कार, और यही क्या होगा, प्रत्यक्ष फल। इसी प्रत्यक्ष फल की सीजन में प्रत्यक्षता होगी। बाबा ने यहां साक्षात्कार के हमें वो भी उदाहरण दिया, यज्ञ की शुरुआत में जैसे कैसे साक्षात्कार हुआ, लोगों को जादू लगा पर आवाज तो फैला, वैसा ही अब फिर होगा। तो इस तरह से इस मुरली का सार दोनों मुरलियों का सार बाबा ने समझा इस वर्ष क्या करना है, ऐसा कहा ना। तो सबसे पहले तो जो तीन शक्तियां हैं उनमें जो अधिकार की कमी है उसको सुहा करना, एक। दूसरा, जो लंगड़ी आत्माएं हैं उनको चलाना, उनको हिम्मत देना। फिर उसके बाद में ये जो नशे वाली बात कही है बाबा ने, वरदान की, वरदानी स्वरूप बनना, वरदानी स्वरूप की सेवा करना, शांति कुंड, ज्वाला स्वरूप शांति कुंड की रचना करना और इसका वायुमंडल वाइब्रेशन फैलाना, ये भी एक सेवा है। और संगठन की भी बात कही है, सब ब्राह्मणों की उंगली से, जो वरदान में भी कहा है आज, जहां मेजोरिटी वहां मैं, अगर मेरा विचार अच्छा है पर वो अच्छा है तो अच्छा से अगर संगठन टूटता है तो वो अच्छा भी साधारण है, ऑर्डिनरी है, और ये जो अगर त्याग भी करना पड़ता है तो वो त्याग भी भाग्य है। तो संगठन की शक्ति के बारे में बाबा ने यहां कहा है। और लास्ट में दादियों से मुलाकात में एकांतवासी बनना है, बीच बीच में कार्य करते समय एकांतवासी और अंडरग्राउंड, एकांतवासी और अंडरग्राउंड, इसका बाबा ने कहा इस अभ्यास की लहर फैलाओ, ये प्रैक्टिस करो। तो और कोई पॉइंट छूटा हो तो बता दो। याद प्यार में, याद प्यार में ऐसे क्या आवाज में रहते, आवाज से परे रहने वाली आत्मा, ऐसे सदा समीपता का अनुभव करते हुए दूसरों को समीपता में लाने वाली आत्माएं, सदा हिम्मत में रहते हुए दूसरों को हिम्मत दिलाने वाली आत्माएं, ऐसी लंगड़ी आत्माओं को रेस की दौड़, दौड़ की रेस या रेस की दौड़ में लगाने वाली आत्माओं को बाबा शब्द सम्राट है, साहित्य सम्राट है, वो व्याकरण के नियमों को नहीं मानता, उसकी जो हिंदी है वो सर्वनाम संज्ञा कहां पे कुछ भी आ सकता है उसका व्याकरण इस संसार के व्याकरण से परे है। ऐसी विशेष आत्माओं को, लाइट हाउस माइट हाउस आत्माओं को बाप दादा का क्या वालेकम याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।